ओम शांति। हम सब ने भोपाल भाई को यहां पर मधुबन के ब्राह्मण परिवार के द्वारा विदाई देते हुए देखा। ये तो हम सब जानते हैं कि खाली चोला बदलकर बाबा के जो बच्चे हैं अपने दूसरे रूप से सेवा में जाते हैं। हम सब ने उनके भोग का संदेश भी सुना जिसमें दिखाया गया कि कैसे गोपाल भाई बाप दादा के पास इमर्ज हुए और जो कुछ बाप दादा ने उनके बारे में बताया कि उनके ताज पहना हुआ था और बाप दादा ने भोग जो स्वीकार किया उसके बाद बताया कि बच्चे ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है तो बाबा ने उनको अमृत भी पिलाया और भोग भी खिलाया। हम सबको ये बताया कि जैसे यहां पर साकार लोक में अव्यक्त बाप दादा के आगे आकर वो भोग लेते थे उसी प्रकार का दृश्य दिखाया ताकि सभी उस दृश्य को समझ सके। कुछ दिन पहले उनका एक बाबा के साथ अव्यक्त बाबा के साथ वीडियो भी छोटा सा दिखाया जा रहा था जिसमें बाबा उनसे निश्चय की बात कर रहे थे कि बच्चे निश्चय में विजय है और जितना निश्चय रखेंगे उतना आसानी से विजय होती जाएगी। मेरा गोपाल भाई के साथ पहला संपर्क बहुत वर्ष पहले हुआ था। आप जानते हैं कि एक दिन ऐसा भी था जब ब्रह्मा बाबा साकार थे तो सारे यज्ञ में एक भी कार या ट्रक या बस नहीं होता था। स्वयं ब्रह्मा बाबा भी कारने अकारने कहीं जाते थे तो केवल एक टैक्सी वाला होता था, उसका नाम था आयदान, तो उसकी टैक्सी को ही बुलाया जाता था, उसमें ब्रह्मा बाबा जाते थे। और भी कोई वीआईपी उस समय कोई आ जाए, मुझे याद है न्यूज़पेपर के एडिटर एक पंजाब से आए थे, उनको भी जाना था वापस, तो उसी टैक्सी वाले को बुलाया गया था। वो एडिटर बहुत चिंता में थे कहीं उनकी ट्रेन मिस ना हो जाए आदि आदि, तो मेरी ड्यूटी थी उनके साथ, तो मैंने कहा निश्चिंत रहिए। वो घड़ी घड़ी वॉच देखते थे टैक्सी वाला आया नहीं, तो जब हम उसकी टैक्सी में बैठ के स्टेशन की ओर जा रहे थे तो मैंने उसे कहा भाई इनको बताओ कि कभी किसी की ट्रेन मिस हुई है यहां से, तो उसने कहा नहीं। तो इसलिए वो भी दिन थे। अब गोपाल भाई क्योंकि मिलिट्री से आए थे और उस समय धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ गया तो मुझे गोपाल भाई ने कहा, मैं दिल्ली में रहता था, कि मिलिट्री का जो डिफेंस डिपार्टमेंट होता है वो मिलिट्री के जो ट्रक होते हैं उनको बहुत टॉप क्लास पोजीशन में रखता है और कुछ समय के बाद ही वो ट्रकों को नीलाम कर देते हैं और नए ट्रक ले लेते हैं ताकि मिलिट्री में चलते समय कोई ट्रक किसी प्रकार से बिगड़ न जाए। तो उसमें कभी दो प्रकार के ट्रक होते थे, एक का नाम शक्तिमान था और एक टाटा के ट्रक होते थे। तो मिलिट्री भारत के बने हुए ज्यादातर शक्तिमान ट्रक यूज करती थी, लेकिन गोपाल भाई ने कहा कि टाटा के बने हुए ट्रक अच्छे होते हैं और वो जम्मू कश्मीर की तरफ मिलिट्री वाले वही यूज करते हैं, उनको भी गवर्नमेंट जो है कुछ समय के बाद डिस्कार्ड कर देती थी। फिर उन ट्रक्स का एक ऑक्शन होता था, रेट फिक्स किया जाता था और वो आम जनता को नहीं बेचे जाते थे, बल्कि एनजीओ हैं, सोशल सर्विस करने वाली संस्थाएं हैं, उनको बेचे जाते थे। तो तीन साल में एक बार एक संस्था एक ट्रक और एक पिकअप ले सकती थी। तो मुझे याद है कि पांच बार हमने तीन तीन साल बाद एक ट्रक और एक पिकअप मिलिट्री से लिए थे और उस समय बहुत सस्ता रेट पे वो दे देते थे, उसको थोड़ा बहुत ठीक करा लो तो वो बहुत समय चलते थे। तो गोपाल भाई उस वक्त दिल्ली में आते थे, फिर उस वक्त ट्रक को सिलेक्ट किया जाता था, बहुत सारे ट्रक खड़े होते थे कि ये हमने लेना है, फिर उसको लिया जाता था सरकार को पैसे देकर और फिर उसको ठीक ठाक करा के वो यहां चलाते थे। और उसमें वाटर टैंकर भी एक बार लिया गया था पानी का, तो 15 साल से ज्यादा वही ट्रक बहुत पक्के होते थे, वो मधुबन में यूज होते थे, नीचे भी आते थे, दूसरे कैंपस में भी जाते थे और गोपाल भाई स्वयं उसको चलाया करते थे। उस वक्त मेरा गोपाल भाई से संपर्क हुआ था तो मैंने देखा कि वो बहुत सादा, बहुत इकोनॉमिकल, बहुत सिंपल और जैसे कि बाबा के ब्राह्मण बच्चे कर्म योगी होते हैं उस प्रकार से थे। उसके बाद यज्ञ की परिस्थिति बदल गई, हम इस लायक हो गए कि हम नए ट्रक लें, नए ट्रक तो नए ही होते हैं। उसके बाद फिर वो नए ट्रक लिए जाते थे और उसके बाद भी दो तीन बार मेरा गोपाल भाई के साथ जोधपुर जाना हुआ, क्योंकि वहां इनकम टैक्स के केस लगा करते थे। तो जोधपुर की बहनें होती थी, मैं होता था गोपाल। उस वक्त भी मैंने देखा उसका एक दैवी परिवार वालों जैसा स्वरूप था, भाई बहनों जैसा रूहानी। रस्ते में कोई नदी आती थी वहां हम लोग वो ट्रक को धो लेता था और हम लोग नाश्ता वास्ता करते थे। हमने उसके जीवन से क्या देखा कि अंतिम जो उसकी यात्रा हुई तो आप जानते हैं कि कितने लोग बीके तो हैं ही और बीके भी हमारे भाई बहन हर डिपार्टमेंट के जिनके साथ उसका संपर्क रहा, क्योंकि गोपाल भाई का संपर्क जो था बहुत सारे डिपार्टमेंट के साथ था और आम हर प्रकार के बीके का उससे संपर्क था। उनका इतना स्नेह था, नेचुरली स्वाभाविक, इतनी संख्या में वो इकट्ठे हुए। और उससे भी ज्यादा हमने ये देखा कि वे यहाँ के जो लोकल लोग हैं, खास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो सब के सब जो थे बहुत ही संख्या में बहुत स्नेह से उसको विदाई देने आए। और हमारे हर एक कैंपस में, छोटे कैंपस या बड़े, सब में उनकी बॉडी को ले जाया गया। ये भी एक भाग्यशाली आत्मा की निशानी होती है। मुझे बताया गया कि यहाँ के जो सरकारी लोग होते हैं, कई प्रकार के अफसर होते हैं, वो भी बहुत ही भावभीनी उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उसको गरीबों का मसीहा कहा। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी यज्ञ की शान है कि एक आत्मा यज्ञ में रह करके बाहर वालों से भी इस प्रकार का संपर्क रखे कि बाहर वाले भी समझें कि हमें इस यज्ञ के द्वारा कुछ न कुछ वक्त के ऊपर प्राप्ति होती है। सब यही कह रहे थे कि जब कोई आपदा आती थी, जब कोई ऐसी बात आती थी तो गोपाल भाई आगे बढ़कर आते थे। खास तौर पे पानी की समस्या के लिए हमने भी देखा है कि किस प्रकार से पानी के टैंकर भर भर कर जब भी पार्टी आती थी, काफी पानी खर्च होता है। कितना भी कहो कि पानी कम यूज करो, फिर भी कुछ तो खर्च होता है। लेक में पानी नहीं होता था तो कहाँ कहाँ से पानी ला करके, गांव वालों से, कुएं वालों से पानी खरीद करके उस भाई ने पानी की आपूर्ति की। दादी प्रकाशमणि जी को हमेशा एक ही ख्याल होता था कि पानी की कमी ना हो। खुद दादी लेक में जाया करती थी, देखने झरनों को देखती थी और कई बार तो ब्राह्मणों ने लेक में खुदाई भी की ताकि ज्यादा से ज्यादा पानी आए। उसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारी ये कलयुगी दुनिया है, इसमें बाहर वालों के साथ स्नेह युक्त व्यवहार करना, अपने नियमों में भी रहना और कई प्रकार की अड़चने, कई प्रकार के विघ्न आते हैं, उन सब के अंदर गोपाल भाई ने जाकर के, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटीज हो, छोटी मोटी यहाँ कचहरी है, सरोही में भी जाना होता है, सबके साथ एक गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगता था, लेकिन ऐसे स्नेह युक्त संबंध बनाए हुए थे। उनको बाबा की टोली देना, बाबा के कैलेंडर देना, उनसे संपर्क रखना, यहाँ तक के टोल टैक्स वाले भी, मुझे पता है कि बहुत सारी हमारी गाड़ियों के नंबर गोपाल भाई ने दे रखे थे, उन गाड़ियों को टोल टैक्स वाले छोड़ देते थे। इतना लंबा चौड़ा संपर्क रखने की वजह से ही वो आत्मा जब बाबा के पास गई तो कहा कि मैं संतुष्ट हूँ, मैं अपना कार्य पूरा करके आया हूँ। और बीच बीच में बाबा ने ये भी थोड़ा सा हिंट दिया कि कभी कभी बच्चा जो था वो अपने अथॉरिटी में आ जाता था और सबसे बड़ा काम मिलिट्री वाला था वैसे भी, और आज की दुनिया के साथ व्यवहार करने में आपको रूप भी रखना पड़ता है। और ये भी था जो बताया गया, उसने सबसे बड़ा काम क्या किया कि ये सारा जो इस शांति वन में हम बैठे हैं, ये सारे का सारी भूमि, ये सारे का सारा स्थान, जिसकी बाद में इतनी आवश्यकता पड़ी कि हम सब देखते हैं कि अब ज्यादातर सारी हमारी एक्टिविटी जो है शांति वन से ही चलती है। इस स्थान को सरकार जो थी वो जिसको कहते हैं शेड्यूल कास्ट ट्राइब, उनको ही दे सकती थी और उन्हीं के द्वारा उन लोगों की ये जमीनें थी और उसको उन्हीं प्रकार की जाति वालों को ही दिया जा सकता था। तो ये भी देखो बाबा ने, वैसे तो बाबा ने कहा कि करवाया तो मैंने ही, लेकिन बच्चा निमित्त बना, तो उस आत्मा का ऐसा भाग्य था कि उसको इस प्रकार का सेवा करने का मौका मिला। जो कहा जाता है तीन पैर पृथ्वी मुश्किल से मिलती है, ऊपर में हमने देखा ऊपर के लिमिटेड स्थान था, पहाड़ी इलाका था और कैसे थोड़ी थोड़ी जमीन लेने के लिए भी कई प्रकार के यत्न करने पड़ते थे। फिर तो सरकार ने वहां बंदी कर दिया था बड़ा बड़े स्थान लेना। उस मौके पर गोपाल भाई ने ये जो बहुत बड़ा कार्य किया यज्ञ का, आज इस स्थान से आप जानते हैं कि सारी दुनिया की आत्माएं आके लाभ लेती हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म हो गया। और हम समझते हैं कि बाबा ऊपर से देखकर किस आत्मा का भाग्य बनवाना है, किस तरह उसको निमित्त बनाना है, इसमें आवश्यक नहीं होता कि कोई भाषण करने वाला ही हो, कोई सेंटर संभालने वाला ही हो। हर प्रकार की आत्मा जो है बाबा के यज्ञ में अपना भाग्य बना सकती है। इसी हमें सबक मिलता है। बाबा ने ये भी कहा हुआ है, कई बार बाबा ने कहा है कि चाहे आप बर्तन मांजने वाले हो, चाहे आप भाषण करने वाले हो, आप अपने भाग्य को बना सकते हो। केवल दूसरे की तरफ देखकर दूसरे के भाग्य को अपना अपने भाग्य से कंपेयर नहीं करना है। हमें अच्छी तरह याद है जब पुरानी दादियों का सम्मान समारोह हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा ताली जो बजी थी वो भोली दादी की बजी थी, जो भोजन का संभालती थी शुरू से लेकर। उसका भी देखो कैसा ऐसा भाग्य था कि भोली दादी के पास आप जाएं, कहें दादी नींबू चाहिए तो उठकर नींबू लाती थी। तो वो जो उस भावना थी यज्ञ की सेवा की, उससे भी उसका बहुत बड़ा भाग्य बन गया। तो इसलिए हमने देखा कि बाबा ऐसी आत्माओं को फिर अपॉर्चुनिटी भी देता है। जब ये शांतिवन अभी लिया गया था, यहाँ कोई खास कंस्ट्रक्शन नहीं था, उस समय यहाँ पर गाय होती थी, तो गोपाल भाई जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज है वहाँ एक छोटा सा स्थान होता था, वहाँ वो रहा करते थे। और मेरा उनसे नेचुरल थोड़ा सा स्नेह था, तो मुझे वो कहते थे कि जब आप दिल्ली से आएंगे तो हमारे पास नाश्ता किया करो और हम मक्खन और आलू के पराठे आपको खिलाएंगे। तो मैं भी स्नेह से आकर के हम रेलवे स्टेशन पर स्नान कर लेते थे और यहाँ से नाश्ता करके जाते थे। ये हमारा एक स्वाभाविक रूटीन बन गया था। तो एक बार हमारे साथ कमल सुंदरी देवता दादी, जो मेरठ की रहने वाली थी, वो भी आई थी। तो हमने कहा कि दादी हम यहाँ पर भोपाल भाई के पास नाश्ता करके जाते हैं, आप भी चलो। वो कहती मैं तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा दादी वो बड़े प्यार से, वहां तो बहुत गाय हैं और खूब अच्छी तरह से उसके पास भाई है, प्यार से ना। कहती नहीं। तो मैंने कहा दादी क्यों? तो कहती है कि हमारा ऊपर तो हक बनता है, हम जा रहे हैं वहां तो हमारा नाश्ता मिलना स्वाभाविक है। अब ये भाई को मैं खास जाके जाऊं, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा नाश्ता बनाए, ये मेरे पर बोझ होता है। मैंने कहा नहीं दादी, वो तो बड़े प्यार से बना के खिलाता है। कहती तुमको क्या पता, तुम तो समझते हो, मान लो तुम ट्रेन लेट हो जाती है, तुम अपने टाइम पे जाके वहां पहुंच जाते हो, खिलाएगा तो सही वो, लेकिन हो सकता है कभी कभी उसको ऐसा लगे कि देखो मजबूरी लगे, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। तो मैंने दादी से सीखा के देखो हमारी पुरानी दादियां इतने असूल को भी रखती हैं कि ऊपर का नहीं देखती, अपने ज्ञान के नियम पर पक्की रहती हैं। उसके बाद मैंने भी वहां नाश्ता करना बंद किया। तो कहने का भाव यह है, सीखने वाला बहुत कुछ सीखता है। तो हमने ये देखा कि कोई भी आपकी, जिसको हम समझते हैं कि ये तो हमारी कमजोरी है, ये तो हमारे में कुछ गुण है ही नहीं, बाबा उसको भी यूज करके और इतनी बड़ी सेवा करवा लेता है। केवल हम बाबा के ऊपर निश्चय रखें और अपने काम को जो हमें मिला हुआ है उसको छोटा न समझें और किसी के काम के साथ अपने काम को कंपेयर न करें। अगर आप आज की राष्ट्रपति जो हमारी ब्रह्मा कुमारी मुर्मू बहन जी है उनको ही देखें, अब देखा जाए तो भगवान बाबा ने, क्योंकि वो भी इसी पिछड़े तबके की हैं, तो बाबा ने उनको इसी निमित्त इसी कारण से उनको ये पद बाबा ने कौरव गवर्नमेंट में भी दिला दिया। लेकिन अगर आप उनका जाके जीवन देखें और उनका व्यवहार देखें कि इतना पक्की वो नियमों की पक्की, इतनी वो सादा, इतनी वो सरल स्वभाव की, अभिमान का नाम नहीं है, सबसे सीखने की कोशिश करती है, बाबा बाबा करती है और रोज अमृत वेले से पहले उठती है, बाबा को याद करती है। आप उससे बात करें तो आपका दिल खुश हो जाए, उस आत्मा में जरा भी अभिमान नहीं है। और सारे बीके परिवार को वो श्रेष्ठ गिनती है, ये मेरा रूहानी दैवी परिवार है। तो हमने देखा जो भी बीके उसके पास जाते हैं वो बोलती हैं कि मुझे आपसे अच्छा वाइब्रेशन आता है, अच्छी शक्ति मिलती है। तो फिर भी हमारे बीके लोग ऐसे करते हैं कि जैसे वो सचमुच राष्ट्रपति है। अब मान लीजिए वो यहाँ आएंगी तो आप सीन देखेंगे कि वो तो आती है कि मैं इनकी बहन के नाते से यहाँ आई हूँ, अपने बेहद परिवार में आई हूँ, हर एक ब्राह्मण मुझे वाइब्रेशन देगा, इतने बड़े परिवार में मैं अपने आप को रिफ्रेश करने आई हूँ, क्योंकि वहां तो सरकार में बहुत बंधन होते हैं। यद्यपि सरकार भी उससे बहुत खुश है कि एक ब्रह्मा कुमारी इस प्रकार से कर्तव्य निष्ठ होकर के हर स्थान पर जा रही है, हर प्रकार की सेवा कर रही है। तो सादगी जो है ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। हमने देखा है ऊपर की भी सादगी, अंदर की भी सादगी। जो ज्ञानी जैल सिंह थे वो भी पढ़े लिखे नहीं थे इतना, लेकिन उनकी भी सादगी थी और वो हमें कई अपने जीवन की कहानियां सुनाते थे कि उनके अंदर कितना त्याग भाव था। इसी तरह से ये जो राष्ट्रपति है इसके अंदर भी कितना त्याग भाव है, यानी जब भी ये छोटी पोस्ट पर भी थी तो इसने किस प्रकार से लोगों के दुख देखे और मेहनत करके दुखों को दूर किया। हमारे कई बीके लोग समझते हैं कि हमारे तो आध्यात्मिक काम है, हमने दुनिया से क्या लेना देना, हमें आसपास से क्या लेना देना। अगर कोई यहाँ पानी लेने भी आ जाए, किसी के पास पानी नहीं है तो हम सोचते हैं कि ये ज्ञान तो लेता नहीं, पानी ले रहा है, हमारे यज्ञ का पानी क्यों ले रहा है। इस प्रकार के भी हमारे मन के अंदर प्रश्न उठते हैं। लेकिन बाबा ने कहा हुआ है कि जिसको जो चाहिए, ब्रह्मा बाबा के समय में हम देखते थे हर एक व्यक्ति ज्ञान नहीं लेता, लेकिन हर व्यक्ति कहता था मेरा बाबा, क्योंकि जो उसको रिक्वायरमेंट थी। हमने देखा बाबा एक बार बॉम्बे जा रहे थे, सारे जो भीलनिया या और सेवादारी थे रो रहे थे आंसू, हम लोगों से भी ज्यादा वो आंसू बहा रहे थे। क्यों? तो उनको कुछ बाबा ने दिया था, इसलिए हम समझते। तो ये गोपाल भाई ने भी यही किया और राष्ट्रपति को भी मैंने देखा, उसने बताया कि कैसे जब वो एमएलए थी उसकी ड्यूटी लगी थी जेलों में जाके देखना, उसने देखा कि थोड़े से ऐसे नाम मात्र पर लोग जेल में डाल देते हैं, घर वाले छुड़वाने नहीं आते क्योंकि बहुत खर्चा आता है, तो वो पड़े रहते हैं जेलों में। उसने जाकर के 5,000 लोगों को एक बारी ही जेल से जज को कहके छुड़वाया। तो ऐसी ऐसी जो सेवा होती है ऊपर तो गिनी जाती है ना, इन आत्माओं में मनुष्य आत्माओं के लिए हमदर्दी है, करुणा है, दया है। तो हम कभी कभी ज्ञानी बनने के बाद अपनी करुणा दया उसको खो देते हैं, तो हम बड़ा छोटा गिनने लग जाते हैं ज्ञान में भी। लेकिन बाबा ने कहा ये परिवार है और इस परिवार में जिसका सच्चा दिल है, जो सच्ची बाबा की सेवा करता, छोटी मोटी भी कोई सेवा उसको छोटी नहीं गिनता, वो बहुत बड़ी सेवा करता है, इसलिए इसमें निर्वाणता चाहिए। तो हम देखते हैं होते सब अच्छे दिल के हैं, लेकिन जिसको परचिंतन कहते हैं या दूसरे को देख करके कहते हैं, उसको देख करके मान लीजिए मैं यज्ञ में सरेंडर हुआ, उस समय 5 लोग एक कमरे में रहते थे, मैं बड़ी खुशी से सरेंडर हुआ, मैं 5 लोगों के बीच में रहने लगा कि मुझे ब्राह्मण का जीवन मिला, बाबा ने सेवा का मौका दिया भाग्य का। लेकिन थोड़ी सी आगे यज्ञ बढ़ा, ज्यादा कमरे बन गए, किसी को एक कमरा मिल गया, अब मेरे मन में अशांति पैदा हो गई कि नहीं मैं तो 5 के साथ नहीं रहूंगा, वो 2 जने रहते हैं, मैं भी 2 जने रहूंगा। आगे चलो कि हम उसको कार मिली है, मुझे भी कार मिलनी चाहिए। अब बाबा कहता है कि वो कहाँ, बाबा कहता है कि आप चाहो यहाँ सब कुछ ले सकते हो क्योंकि भगवान का घर है, लेकिन आपकी जो एक तो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध है, एक जो अविनाशी प्रारब्ध है, जो हम बाबा ने कहा कि तुम अविनाशी आत्मा हो, आगे तुम शरीर मान के चलते थे, एक ही जन्म में सुख ढूंढते थे, संसारिक सुख ढूंढते थे, उसको तुम छोड़कर आए और जो तुम्हारी अति इंद्रिय सुख की अंदर का सुख है वो तुम्हारा कहाँ जाएगा। इसलिए धीरे धीरे अलबेलापन आ जाता है। मैंने देखा, बाबा कहते अमृत वेला मैंने रखा हुआ है कि देखें कि मेरे बच्चों का मेरे से कुछ अंदर का प्यार है। अगर हम बीमार हो जाएं, आईसीयू में पड़े हों, तो उस समय तो हम अमृत वेले से पहले भी उठकर कहेंगे हे बाबा मुझे बचा ले, हे बाबा मुझे बचा ले, आगे से मैं अमृत वेला करूंगा। फिर जैसे बाबा कहता है गर्भ से निकलते हैं तो सब भूल जाते हैं अपने वचन, फिर बाद में आके वो भूल जाते हैं। तो ये जानबूझ के बाबा ने रखा हुआ है कि शांति की शक्ति से, शांति से वातावरण में बैठकर, एक दूसरे को संगठन में वाइब्रेशन देकर हमने तत्वों को शुद्ध करना है। हमने बाबा से शक्ति लेनी है। बाबा कहते उस समय मैं बिना मेहनत के देता हूँ, तो आप देखेंगे हम जरा से नामी ग्रामी हुए तो हम सोचते हैं कि जहाँ भाषण करना है, जहाँ मुरली सुनाना है, मुरली सुनने के समय सब होंगे। लेकिन वो जो पहले का टाइम बाबा ने कहा ये तपस्या भूमि है, यहाँ हमको उसमें हम गलती कर जाएंगे। ऐसे खाने पीने में है तो बाबा ने दो चार दिन पहले भी कहा कि बच्चे खाने पीने में आपको बहुत ध्यान रखना है, ऐसा ना हो, डिटेल सारी आपने सुनी है, तो बच्चे उसमें भी लापरवाही कर जाते हैं। तो जो हमें 100% बाबा कहते हैं कि जन्म जन्मांतर के लिए और अथा और सतयुग से शुरू से लेकर हमको प्राप्ति होनी है, हम थोड़ी सी लापरवाही के कारण, पर चिंतन के कारण, दूसरे को कॉपी करने के कारण हम उसको गवा देते हैं। इसलिए हम अगर ऐसा करें कि हमें लोग कॉपी करें, उसका भी आपको बाबा कहता है फल मिलता है। फल की बात नहीं है, खास तौर पे कई मुरलियों में आपने देखा होगा बाबा ने मधुबन वासियों को अभी लास्ट मुरली में भी कहा है कि अगर नंबर लेना है बिल्कुल निर्विघ्न का तो मधुबन वासियों को लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तपस्या भूमि है, इतना सहयोग है। लेकिन कई बार कोई चीज आसानी से मिल जाती है तो व्यक्ति उसकी वैल्यू नहीं करता, मुश्किल से मिलती है। अगर कोई चिल्ली या न्यूजीलैंड में बैठा है उसको जितनी खींच होगी उतनी, जो इसी यहाँ पर रहने वाला शायद उसको ना हो, वो सोचता मैं तो साथ वाले कमरे से उठ के आ जाऊंगा। लेकिन बाबा ने बताया हुआ है इस संगम युग का अंदर का सुख जो आपको मन से संतुष्ट रखे, और वो संतुष्टता ही प्रत्यक्षता करेगी। हमारी प्रत्यक्षता कोई भाषणों से नहीं होनी है, हर एक के संतुष्ट जीवन को देखकर ऑटोमेटिकली सेवा होती है। तो इसलिए इस गोपाल भाई के हमने देखा कि देखने वो साधारण काम करता था लेकिन हर काम को महत्व देकर, मुझे पता है कि फल डिपार्टमेंट का भी वो इंचार्ज था। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, उसको फल की आवश्यकता हो, उसको विशेष फल भिजवाता था। एक यहाँ भाई है जो मेरी भी सेवा करता है, थोड़ी सी उसकी भी करता था। वो भाई मुझे बताता था कि पाल भाई रोज पूछता था भाई साहब कैसे हैं। यद्यपि मेरा उससे कोई मिलना जुलना नहीं, तो मुझे लगता था कि वो दिल से समझता है कि भाई साहब भी मेरी तरह से यज्ञ के स्नेही सेवादारी हैं, रोज मिलते तो नहीं है। अब देखो भगवान ने उसको स्थान भी कैसा दिया, दादी कॉटेज के ऊपर, यानी आप देखेंगे ड्रामा अनुसार उसको कितने सारे सेवाधारी दिए, कितने सहयोगी दिए, जो सारा कारोबार संभालता था। तो बाबा कहते हैं आप मन साफ रखो, बाबा से निश्चय रखो, तो किसी भी पोजीशन में हो, चाहे आप ओल्ड एज के हो, चाहे आप दूर रहते हो, कुछ भी हो, हर स्थिति में आत्मा विशेष आत्मा है और वो अच्छा पद प्राप्त कर सकती है। इन लोगों इनको देखकर हमें जो इनकी अच्छी अच्छी विशेषताएं हैं, सादगी है, इकोनॉमी है और सबके साथ मिलना है, जरूरत के वक्त काम आना है, ये सब हमको धारण करनी चाहिए। ओम शांति।
احسان